गोपियों ने दृग भी पीवन की, गोपियों ने आंखों से पान किया किस चीज को, अनुसोम अमृत को, मदिरा का पान किया आंखों से नेत्र से। मदिरा क्या थी? कृष्ण का रूप और कृष्ण का ये शक्ति। दुराप एकांत धाम, दुराप माने दुर्लभ है दूसरों के लिए, ऐसे प्रेम को उन्होंने थप थप करके अपने नेत्रों से कृष्ण की रूप माधुरी का पान किया। जो सोएगा उसको उठा देंगे, चाहे पुजारी हो चाहे कोई भी हो। पुजारी विशेष करके पुजारी लोग सोते हैं, सावधान रहें, नहीं तो हम वो क्या बनाते हैं ना, क्या मुर्गा बना दूंगा। मुर्गा जानता है। हाँ खांस लो पहले। तो गोपेश तपस ऐसे सुंदर रूप का, रूप माधुरी का छक छक करके अपने नेत्र से जो गोपियां पान कर रही है, दूसरों के लिए असंभव दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। हो गोपियों ने कौन सा ऐसा तप किया? कौन कह रहा है? यहाँ की ज्यादा पत्नियां कर रही है किशोरी स्त्रियां कर रही है, सोच रही है क्या? ओ क्या भला तप से, किसी भी प्रकार के तप से ऐसे रूप का की रूप माधुरी पान की जा सकती है, संभव है? नहीं। तो कौन सा तप किया? किमाचरण? अरे तप नहीं किया तो क्या किया? क्या गंगा स्नान से, तीर्थों के स्नान से कृष्ण के ऐसी दुर्लभ और अनुपम रूप राशि का पान किया जा सकता है? कभी संभव है? ये भी संभव नहीं। जब अद्भुष्म रूप, इस रूप को, कौन रूप? अभी इस रूप को, कृष्ण और बलदेव को, स्पेशली कृष्ण के रूप को। कैसा रूप है? लावण्य सार असमोर्ध अनन्य सिद्धम। लावण्य सार, लावण्य किसको कहते हैं? काला व्यक्ति भी लावण्य की वजह से परम सुंदर दिखता है, और गोरा व्यक्ति भी यदि शरीर पर लावण्य न रहे तो उतना सुंदर नहीं दिखता है। कृष्ण ऐसे ही निराले लावण्य से युक्त थे, श्याम रंग होने पर भी लावण्य से, लावण्य का सा जैसे वो होता है मोती, मोती होती है सफेद, किंतु भीतर से ऐसी एक ज्योति निकलती रहती है, तो वैसे कृष्ण के शरीर से भी ऐसे दीप्ति शोभा और ये लावण्य निकलता था, जिसको कृष्ण को देखते ही सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। लावण्य सार कैसा? असमोर्ध, असमोर्ध मैंने असमोर्ध, ये कृष्ण के समान किसी का भी रूप नहीं, नारायण का भी नहीं, राम का नहीं, बलदेव प्रभु का भी नहीं, किसी का भी नहीं। लावण्य सार असमोर्ध, और उसे बड़ा होने की तो कोई बात ही नहीं, न सम, समय नहीं है तो उर्ध क्या होगा, उनसे किसी की तुलना नहीं जा। तो कृष्ण के मुखारविंद को कमल से तुलना दी गई, मुख और अरविंद, अरविंद से तुलना गई, किस लिए, किस लिए तुलना की गई? कुछ है ही नहीं है जगत में जो तुलना की जाए, इसलिए उपमा अलंकार इसको दिया। अरे कमल का फूल कृष्ण के मुख की बराबरी कर सकता है? यह संभव नहीं, कभी भी कदापि नहीं संभव कर सकता है, इसलिए संसार में उनके रूप के समान और कोई तुलना नहीं हो सकती है। अनन्य सिद्धम, एक काला बर दांत कुछ निकले हैं और थोड़ा सा सुंदर भी नहीं है, खूबसूरत भी नहीं, और उसको हल्दी और कुमकुम से स्नान कर, पाउडर लगाकर और तरह तरह के अलंकारों से अलंकृत कर दिया जाए, सोने का मुकुट लगा दिया जाए, अलका भी लगा दिया जाए, पाउडर से चिकना मुख कर दो और लाइट में देखो तो कैसा दिखेगा? कुछ सुंदर है, कुछ सुंदर दिखता है, ऐसे नहीं दिखेगा। लड़की के लिए भी ऐसे ही समझो, अलंकारों से, पाउडरों से और चीजों से सहायता से उसको सुंदर बनाते हैं। और कृष्ण का कैसा? अरे मिट्टी लेप दो उनके मुख पर, ऊपर धूली छोड़ दो ऊपर में, एक स्याही महाप्रभु जी के लग गई, परम सुंदर और सुंदर से भी सुंदर वो बन गए। यदि कृष्ण नंगे चल रहे हैं ना तो भी बड़े सुंदर क्या है। कृष्ण ऐसे सुंदर हैं, ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं, जो सदा जी उनके कमर में करधनी लगाना चाहती हैं सोने की, लगाना चाहती हैं, उसमें छोटी छोटे खुद्र घंटियां बांध दी गई हैं, बांधने जा रही वो भी नहीं बांधी, आंख में काजल लगाना चाहती थी वो भी नहीं लगाया, और वो भागा मचल करके। यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ी, कोई अलंकार भी धारण नहीं करने दिया, आज मैया को देख करके आगे से ही भागा। अब उसमें कोई अलंकार नहीं है, कोई अलका भी नहीं दिया, आंख में अंजन नहीं दिया, अभी मोर का वो नहीं दिया, अब कृष्ण उलंगे भागे जा रहे हैं उनको देख करके ऋषि महर्षि सभी लोग और गोपियां एकदम मुग्ध हो गई। ऐसा किसी का रूप नहीं, बिना अलंकार के और भी अच्छे लगते हैं। अलंकार देने से अलंकारों की शोभा होती है। भूषणम ऐसे परम सुंदर हैं ये कृष्ण। एक समय सूरदास जी, जहाँ हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं चंद्र सरोवर पर, अपनी कुटी में थे और वहाँ पर वल्लभाचार्य जी के छोटे बेटे विठलनाथ जी वहाँ पर थे। विठल जी ने कहा, अच्छा एक बात करो पुजारियों से, आज सुबह का समय है, अभी सूरदास अभी आएगा, आज कृष्ण के सारे जितने वस्त्र हैं सब हटा दो। और किसी ने हटा दिया, उन्होंने वल्लभाचार्य के विठलाचार्य जी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, इतने में सूरदास जी पीना लेकर के पहुंचे नंगे एकदम, कुछ भी अलंकार से नहीं सजा, बंसी भी नहीं दी। तो उन लोगों ने कहा, या विठल जी ने कहा, आज सूरदास जी आज कृष्ण के रूप का वर्णन करें, तो भले बने हो ना क्या क्या आज तो ऐसी सुंदर छवि धारण कीजिए, आज तक हमने कभी ऐसा हमने कभी कल्पना हमने नहीं की, ऐसा नहीं देखा, आज आपकी वो झिंगुली भी नहीं, आज यशोदा जी ने तुम्हारे बाल भी नहीं सवारे, आंखों में अंजन नहीं लगाया, आज तुम्हारी बांसुरी भी तुम्हारे हाथों में नहीं है, आज की ऐसी छवि देकर के मैं मुग्ध हो रहा। लोगों ने कहा देखो तो रोज रोज जैसा उनका श्रृंगार किया जाता था वो जैसा कहता था वर्णन करता था, आज कोई श्रृंगार नहीं है, तो ठीक ये कैसे सूरदास जी ने देखी, ये आंखें भगवान का रूप नहीं देख सकती, हम लोगों की आंखें हैं लेकिन तो भगवान का रूप नहीं देख सकती, न कोई आसक्ति है न कोई पंखा चला देंगे बिजली का, आज यदि पंखा नहीं है ठाकुर जी को गर्मी लग रही है तो उन्हें भी पुजारी को भी गर्मी लगेगी, वो भी घर से निकल आएगा, ये नहीं ये पंखा लेकर के इस तरह से कृष्ण परामर्श कर रहे लवन अनन्य सिद्धम, अलंकारों की जरूरत नहीं, ऐसे कृष्ण को देख करके ये गोपियों का परम सौभाग्य जैसे रूप का दर्शन, हमारी जैसी अभागी हैं हम, कैसी हम यहाँ देख रही हैं किंतु कैसे देख रही हैं, जिस समय कृष्ण का किशोर रूप रहने पर भी क्रोध में अविष्ट हैं और ये असुर उनको मारने के लिए तत्पर हैं, इस अवस्था में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोई शेर जबरदस्ती पकड़ करके और पिंजरे में बंद कर दिया गया है, 10-20 दिन तक खाना नहीं दिया है, उसको देखना देखने में कोई डर की बात नहीं है, पिंजरे में बंद है ना, जाकर के ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, और उसे छोड़ दिया जाए तो जंगल में एक अपने गर्जन से जितने हाथियां हैं और जितने लोग हैं सब डर जाएंगे, इसलिए कृष्ण का रूप ऐसा है। अब कल इसकी व्याख्या करेंगे।